महाभारत की इस क्लास में चर्चा हम लोग ये कर रहे थे कि किस प्रकार पांडवों को जब वनवास हुआ और फिर श्री कृष्ण दृष्टद्युम्न इत्यादि मिलने आए और कैसे द्रौपदी ने ये कहना प्रारंभ किया कि पांडवों की शक्ति का कोई उपयोग नहीं है, इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए और बहुत कुछ द्रौपदी ने कहा। और फिर कहते कहते उसने कृष्ण को भी कहा कि आपने भी मेरी रक्षा नहीं की, बाकियों ने तो नहीं की लेकिन आपने भी रक्षा नहीं की। चतुर्भी कारणे कृष्ण त्वयि रक्षस्मि नित्यशः संबंधात गौरवात सख्यात प्रभुत्वेन केशव। द्रौपदी कहती है कि चार कारण हैं जिससे आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी लेकिन आपने की नहीं। तो ऐसे जब द्रौपदी ने अपने मन के भावों को, दुख को प्रकट किया श्री कृष्ण के समक्ष, तो श्री कृष्ण बोलने लगे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तुम्हें जितने भी लोगों ने दुख पहुंचाया है उन सब कौरवों की स्त्रियां वो भी तुम्हारी ही तरह रोएंगी, उनके भी आंखों में आंसू होंगे, वो सब अपने अपने पतियों को खो बैठेंगी, वो सारे युद्ध में मारे जाएंगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम अपना राज्य फिर से पुनः प्राप्त करोगी, अपना स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें विश्वास होना चाहिए क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ। हो सकता है कि हिमालय टूट जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तो उस समय द्रौपदी ने उसको स्वीकार किया, बड़ी प्रसन्न हुई। अर्जुन ने भी कहा कि चिंता नहीं करो। धृष्टद्युम्न ने कहा द्रौपदी से कि तुम चिंता नहीं करो, द्रोणाचार्य को मैं मारूंगा, अर्जुन कर्ण को मारेंगे इत्यादि, ऐसे सब चर्चा हो गई। तो इस तरह से द्रौपदी थोड़ी शांत हुई और फिर कृष्ण और धृष्टद्युम्न इत्यादि जो भी आए थे वो जाने के लिए तैयार हुए। और कृष्ण ने कहा, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था आप वहाँ आए नहीं, तो कृष्ण युधिष्ठिर इत्यादि से कहने लगे कि दरअसल मैं द्वारका में था नहीं, मैं तो जब वापस आया तब मुझे सूचना मिली कि आपके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मैं तुरंत भाग कर आ गया। अगर मैं द्वारका में होता तो मैं ये जुए का खेल होने नहीं देता। अगर मुझे पहले पता होता कि हस्तिनापुर में आप ये करने वाले हैं तो मैं जुए का खेल होने नहीं देता। बहुत महत्वपूर्ण बातें उस समय श्री कृष्ण ने कही। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं स्वयं चला आता वहां पर, मैं हस्तिनापुर में आता और वहां जितने भी वरिष्ठ हैं, फिर वो चाहे द्रोण हो, भीष्म हो, धृतराष्ट्र हो, इन सब से मैं कहता कि ये जो जुआ खेलना है इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, ये अच्छा नहीं है जुआ खेलना, मैं उन्हें समझाता, प्रेम से उनको समझाता कि इसके बहुत दुष्परिणाम है। और उस समय श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, चार चीजें बड़ी निंदनीय मानी गई हैं, इनको कभी नहीं करना चाहिए। और वो चार चीजें हैं, स्त्री से संग, अवैध संग, या स्त्री से बहुत जो आसक्ति होती है जिससे कोई व्यक्ति अवैध कार्य करता है, दूसरा मांस को खाना या अनावश्यक पशु को मारना, तीसरा शराब पीना और चौथा जुआ खेलना। हमारी संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने नियमों को दिया, कभी कभी लोग कहते हैं कि इस्कॉन के नियम हैं, तो इस्कॉन के नियम नहीं है, इसका वर्णन महाभारत में स्वयं कृष्ण करते हैं कि इन चीजों को नहीं करना चाहिए। भागवत में भी इनका वर्णन हुआ है, जिस समय परीक्षित महाराज कली को दंड दे रहे थे तो कली ने स्थान मांगे रहने के लिए कि कोई तो स्थान दीजिए, मैं कहाँ रह सकूंगा, तो यही चार स्थान उन्होंने दिए थे, जाओ जहाँ वैश्यालय है, मदिरालय है, जुआ घर है, वहां सब रहो। तो यहां बहुत स्पष्ट है कि श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग कहते हैं जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, कहाँ कृष्ण ने कहाँ कहा है? तो उनको कहना चाहिए आप महाभारत पढ़ो, कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये चार चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बड़ी निंदनीय हैं। और फिर वो जुआ खेलने के दोषों को बताने लगे, क्योंकि जुए की बात हो रही थी इसीलिए जुए के दोषों को उन्होंने बताया। वैसे उन्होंने ये बताया कि जब कोई व्यक्ति ये चार तरह के पाप करता है तो उसका जितना भी ऐश्वर्य है वो सब नाश हो जाता है, जो भी उसके अच्छे कार्य हैं, पुण्य पुण्य जो कमाया है वो सब नाश हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इन चार चीज़ों को ना करें। वैसे श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि ये जो चार चीज़ें हैं ये हमें केवल मनुष्य स्तर पर लाती हैं। तो अगर हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं तो हमें ये चार चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए और मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे मांसाहार में मछली भी आती है, ये हमें कहना पड़ रहा है। इसका कारण बताते हैं आपको। कई साल पहले हम यहाँ पर आए थे कारवार में, हमने 7 दिन का भगवद गीता का कोर्स किया था, दूसरी जगह पे था तब, ये जगह नहीं थी हमारे पास, या शायद यहाँ में ध्यान नहीं, कहीं तो किया था। तो जब तीसरे चौथे दिन हमने वर्णन किया, दिखाया लोगों को कि कितना बुरा है मांस खाना और कैसे एक मरे हुए प्राणी को आप अपने पेट में डालते हो, अपने पेट को आप कब्रिस्तान बनाते हो, और फिर बहुत से चित्र दिखाए कि कैसे कितना घृणित है ये। तो अगले दिन एक व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, प्रभु जी कल आपका प्रवचन सुनकर मैंने मांस खाना छोड़ दिया, बिल्कुल मांस नहीं खाऊंगा आज से। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो एक व्यक्ति के ऊपर तो असर हुआ। उसने कहा केवल मच्छी खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। तो एक कारोबार के लिए विशेष बोलना पड़ता है कि मांसाहार में मच्छी भी आती है, क्योंकि वो भी मांस ही है, वो भी एक प्राणी को मार रहे हैं हम लोग। तो ये जो चार नियम हैं जिनका वर्णन कहा जाता है, तो ये इस्कॉन के नियम नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिए गए नियम हैं। भगवान चाहते हैं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आगे चल के जो इस्कॉन में आएंगे वे लोग ऐसा नहीं करें, सबके लिए कहा है भगवान ने। तो महाभारत में इतना स्पष्ट इन चार चीज़ों का वर्णन श्री कृष्ण ने किया कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ें करें, बड़े निंदनीय हैं, भगवान कहते हैं ये पाप है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शराब बिल्कुल नहीं पिए, कोई भी प्रकार का नशा, शराब ही क्यों, कोई नशा नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है, क्यों नशा नहीं करना चाहिए? क्योंकि वैसे ही हम लोग मोह में हैं, हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को बहुत कुछ, पहले ही मोह है, और हम लोग शराब पीकर उसको मोह में चले जाते हैं। शराब पीकर अगर कोई इतना पतला सिकुड़ा आदमी भी होगा तो वो भी अपने आप को राजा समझने लगता है ना? वैसे अगर वो कोई बलशाली व्यक्ति को देखेगा तो कभी उसको चुनौती नहीं देगा, लेकिन अगर शराब पी लेगा तो उसके बाद कितना भी बलशाली व्यक्ति उसको चुनौती दे देगा, मैं तुम्हें देख लूँगा एक बार। ऐसी एक घटना बताई जाती है कि एक बार एक बहुत तगड़ा आदमी था, लोहार जानते हैं आप, जो लोहे का काम करता है, और दूसरा एक आदमी था जो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो ये जो शक्तिशाली व्यक्ति था उसने एक थप्पड़ मारा उसको, वो दूर जाकर गिरा, फिर उठकर आया, बोला अब की बार आओ मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसने फिर और एक थप्पड़ मार दिया उसको, फिर से दूर जाके गिरा, बोला अब की बार आओ, तो और एक मार दिया। तो अब हर बार क्या होने वाला, आपके अंदर शक्ति ही नहीं है, तो अब की बार कौन सी शक्ति आ जाएगी? तो ये मोह है। तो शराब पी के व्यक्ति अपने आप को राजा समझने लगता है, बड़ा बलशाली समझने लगता है और मोह में पड़ जाता। वैसे हम सब भी मोह में ही हैं, हम सबको भी नशा है, तो इसलिए शराब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। गलती से निकल गया ज़्यादा। आप लोग कहेंगे हाँ अभी हमने सुन लिया, श्री कृष्ण ने कहा, सो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और मांसाहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से हमारे हृदय में जो करुणा की भावना है, दया की भावना है, वो समाप्त हो जाती है, कोई रहता नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं इसके लिए हमने किसी के प्राण लिए हैं, किसी को मारा है, तो हमें अपने शरीर को, अपने पेट को एक कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए कि सब मरे हुए मुर्दे हम उसमें डाल दें अंदर। और वैसे भी अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये मनुष्यों के लिए नहीं बना है। वैज्ञानिकों ने इसको स्थापित किया है कि अगर आप विज्ञान की दृष्टि से हमारे शरीर की रचना को देखें तो हमारे शरीर की रचना मांस खाने वाले प्राणियों की तरह नहीं है, घास खाने वाले प्राणियों की तरह है, अर्थात शाकाहारी है। तो हमें वही खाना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस उन चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्यक्ति जुआ तो इतना बुरा है, श्री कृष्ण आगे कहते हैं जुए के दोषों को, कि एक ही समय में व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। देखिए युधिष्ठिर महाराज सारी पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे, और एक ही दांव में सब कुछ हार गए, एक ही दांव, बस एक दांव लगाया कि अगर हार गए तो वन में जाना होगा, बस खत्म, सब कुछ हार गए। तो इसीलिए, और इससे बहुत सारे परिवार टूटते हैं। जब व्यक्ति जुआ खेलने लगता है उसको एक लत लग जाती है, जुआ खेलने से हमें ये लगने लगता है कि बस अगली बार अभी आ जाएगा, एक बार आ गया तो सब कुछ वापस, अब ऐसे सब डूब जाता है पैसा। तो इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए और अवैध संग नहीं करना चाहिए। इसको शास्त्रों में बड़ा घृणित माना गया है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। हर जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पंडित है, उसको मातृवत परदारेषु, दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए, अर्थात अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों को, गृहस्थों के लिए है, ब्रह्मचारियों को, सभी स्त्रियों को मातृवत देखना चाहिए। गृहस्थों को केवल अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको मातृवत। अभी ये बात हम कर रहे हैं तो एक बात स्मरण आ रही है कि इस्कॉन में लोगों को कई भ्रांतियां हैं, वो लोग अपनी पत्नी को भी माताजी कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। कभी कभी कोई भक्त आके कहते हैं मेरी माताजी आपसे मिलना चाहते हैं, माताजी देखेंगे तो पत्नी है। तो पत्नी को छोड़कर बाकी सबको मातृवत परदारेषु और लोष्टवत परद्रव्येषु। परद्रव्य यानी दूसरे के धन को, दूसरे के ऐश्वर्य को पत्थर की तरह मानना चाहिए कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, दूसरे का धन है। तो इसी तरह ये चाणक्य पंडित कहते हैं। तो हर स्त्री को माता के समान देखना ये वैदिक सभ्यता है। प्रभुपाद इसको समझाया करते थे कि इसीलिए हम लोग हमारी संस्था में स्त्रियों को माता जी कहकर संबोधित करते हैं, एक इस भाव से कि हम उनको माँ की तरह देख रहे हैं। एक बार एक सन्यासी से एक प्रश्न किया था किसी ने, ये लड़कों का कार्यक्रम हो रहा था, एक सन्यासी, बहुत वरिष्ठ सन्यासी इस्कॉन के प्रवचन दे रहे थे, उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा, तो उस लड़के ने प्रश्न पूछा, नया लड़का था, उसने कहा कि मैं देखता हूँ इस्कॉन में कि जो पुरुष होते हैं वो सारी स्त्रियों को माता जी कहते हैं, बाद में शादी भी कर लेते हैं, ये ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए, तो ऐसे कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। तो उन सन्यासियों ने कहा, सन्यासी ने कहा, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है, चिंता मत कर। तो खैर ये केवल थोड़ा सा बतलाने के लिए था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर स्त्री को मातृवत अपनी माता की तरह देखें, अर्थात आदर से, सम्मान की दृष्टि से देखें। ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज में स्त्रियों को आदर नहीं है वो पशु समाज है। इसलिए स्त्रियों को बहुत आदर होना चाहिए, क्योंकि स्त्री ये एक पीढ़ी को प्रकट करते हैं। और माँ, माँ का स्थान, माँ को पहला गुरु कहा जाता है, माँ बच्चे के लिए पहली गुरु होती है। तो इसलिए ऐसा स्थान, गुरु का स्थान माँ को देना चाहिए। तो जब भी हम लोग किसी दूसरी स्त्री को देखें तो हमारे हृदय में माँ का स्थान होना चाहिए। इसका एक प्रमाण देते हैं, आगे ही कथा आने वाली है अर्जुन की, लेकिन अभी कह देते हैं। अर्जुन स्वर्ग गए थे, इसको हम कहेंगे विस्तार से, अभी संक्षेप में आपको कहते हैं। तो वहां पर अर्जुन जब आए तो इंद्र ने बहुत बड़ा उत्सव किया, इन अर्जुन के आने की प्रसन्नता में तो बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराओं ने नृत्य किया, बहुत कुछ हुआ। तो उस समय उर्वशी भी नृत्य कर रही थी, और जब उर्वशी नृत्य कर रही थी तो अर्जुन उन्हें देख रहे थे, उर्वशी को। और इंद्र ने यह देख लिया कि अर्जुन का ध्यान, अर्जुन एक टक नजर से उर्वशी को देख रहे हैं। तो इंद्र ने सोचा कि ठीक है, शायद अर्जुन के हृदय में कोई गलत भाव है, और स्वर्ग है, वहां पर तो सब जाते ही भोग करने के लिए हैं। तो इंद्र ने कहा अपने जो उसके उसके मंत्री हैं चित्रसेन, कि जाओ उर्वशी से कहो कि वो अर्जुन को प्रसन्न करे, क्योंकि अर्जुन उसकी तरफ देख रहे थे। तो चित्रसेन ने जाकर कहा, उर्वशी को भी बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के संग करेंगे। तो वो चली गई उर्वशी उनके पास। तो उन्होंने जाकर अर्जुन से कहा, तो अर्जुन ने कैसे उनका स्वागत किया आप जानते हैं। उर्वशी बहुत सुंदर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको देखकर अपने सारा तपस्या सुपस्या सब त्याग देते। विश्वामित्र के सामने आई थी तो विश्वामित्र क्रोध कर बैठे थे। उर्वशी के बहुत स्थानों पर वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने, उनके केवल स्वरूप से, उनके सौंदर्य से उन्होंने उनकी तपस्या को समाप्त कर दिया। तो ये उर्वशी संध्या के समय, रात्रि के समय अर्जुन के पास आए। तो आप सोचिए कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से उर्वशी एक अप्सरा है। तीन चार नाम ही हम लोग सुनते हैं, उर्वशी, रंभा, मेनका। अच्छा है आपने बाकी नाम नहीं सुने या बाकी का वर्णन नहीं सुना, इसीलिए आप थोड़ी भक्ति कर पा रहे हैं। स्वर्ग में भक्ति नहीं होती, इसका यही कारण है। वहां पर इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, भागवत में वर्णन है कि जो देवता होते हैं वो इतनी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं कि फिर भक्ति नहीं कर पाते। तो उर्वशी जब आई तो अर्जुन ने कैसे उनको बुलाया, उनका स्वागत किया। अर्जुन चरणों को स्पर्श करते हैं उर्वशी के, चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं आप आई हैं, आपका स्वागत है, मैं आपका दास हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और उर्वशी ने कहा, ऋषि पहली बार उर्वशी, आप सोचिए उर्वशी कोई अलग भाव लेकर किसी व्यक्ति के पास जा रही है, और वो भी उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा, और वो व्यक्ति उसके चरण छू रहा है, आइए स्वागत है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उर्वशी भूल गई, उसको लगे मैं स्वर्ग में हूँ कि कहाँ हूँ, ये क्या हो गया। तो उर्वशी ने बोला, अर्जुन से कहा कि ऐसे चित्रसेन आए थे क्योंकि आप मेरी तरफ नृत्य के समय आप देख रहे थे, तो इंद्र ने आपके जो पिता हैं उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और आनंद लेने के लिए। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना, आप सोचिए अर्जुन की स्थिति सोचिए, अभी हम आपका अर्जुन ने क्या किया वो तो बताएंगे, लेकिन अर्जुन की स्थिति सोचिए पहले। स्वर्ग में है, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। स्वर्ग में है अर्जुन, स्वर्ग में जहां सब कुछ करने की अनुमति है, फिर उसके पिता ने भेजा है उर्वशी को, उर्वशी स्वयं चाहती है, रात्रि का समय है, अकेले हैं, और उर्वशी कोई साधारण स्त्री नहीं है, अप्सराओं में भी श्रेष्ठ अप्सरा है। और जब उसने ये कहा कि मैं इसलिए आपके पास आई हूं, अर्जुन ने कान बंद कर लिए। विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या कह दिया आपने ऋषि, क्या कह दिया, कौन सी बात। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी तरफ एकटक देख रहा था, इसका कारण यह था कि मैं सोच रहा था कि आप पुरु वंश की जननी हैं। जो वंश आया है इसमें एक राजा हुए थे पुरु, तो उनसे उर्वशी, उस समय भी उर्वशी आई थी। तो अर्जुन कहने लगे कि आप मेरे जो वंशज हैं पुरु, उनके उनकी पत्नी है, इसलिए मेरे लिए माता के समान हैं। तो मैं जब आपको देख रहा था तो मैं देख रहा था कि ये पुरु वंश की जननी है ये, और इसलिए मैं बड़े आदर से आपको सम्मान कर रहा था। देखिए ये अर्जुन, ये भक्त है। तो इसीलिए भक्तों को ऐसे होना चाहिए। इसे कहा जाता है कि परदारेशु मात्रवत परदारेशु, माता के समान देखना। इसका एक उदाहरण हम लोग शिवाजी महाराज के जीवन में देखते हैं। शिवाजी महाराज का नाम आप सबने सुना है, अंतिम राज ऋषि थे वो, उनके बाद कोई राज ऋषि नहीं हुए। तो शिवाजी महाराज ने एक बार कहीं पर आक्रमण किया, जीत लिया उस जगह को, वहाँ का जो नवाब था वो भाग गया। तो उनके साथ में एक मुसलमान भी था शिवाजी के साथ में, तो उसने सोचा कि वहाँ की जो राजकुमारी है वो बड़ी सुंदर है, उसको उसने उठा लिया। ये सोचा कि मैं शिवाजी को तोहफे के रूप में दूंगा, क्योंकि ऐसा होता था जब राजा लोग, खास करके जब मुसलमान जब आक्रमण करते थे तो बहू बेटियों के साथ बड़ा गलत कार्य करते थे। तो ये उठा लाया और फिर दरबार लगा, शिवाजी दरबार में बैठे हैं, और इसने आके कहा कि शिवाजी से कि आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। ठीक लाओ, क्या है तोहफा। तो बोले बहुत सुंदर तोहफा है, आपको पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकर आओ। तो वो स्त्री को लेकर आया, उस राजकुमारी को, और उसने सबके सामने उसका वो जो चेहरा ढका हुआ था उसको उठाया और शिवाजी से कहा ये आपके लिए तोहफा है। तो शिवाजी ने जब उस सुंदर राजकुमारी को देखा, अब देखिए वो राजा है, उनका दरबार है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकते, तोहफे के रूप में दिया जा रहा है। शिवाजी ने कहा काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। और फिर उन्होंने कहा इस व्यक्ति के दोनों हाथ कटवा दो, इसने स्पर्श कैसे किया दूसरी स्त्री को, ये शिवाजी का धर्म नहीं है। तो दोनों हाथ कटवा दिए उसके, क्योंकि उसने उन हाथों से स्पर्श करके लेकर आया था। और फिर राजकुमारी को बड़े आदर सम्मान के साथ वापस भेजा शिवाजी। ये भारतीय सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है, ये धर्म है। इसीलिए शिवाजी को अंतिम राज ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों का, धर्म का सही से पालन किया। तो इसीलिए ये जो नियम है ये हमें बड़े कड़ाई से पालन करने चाहिए। चार नियम विशेषता, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, शराब ही नहीं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं नशे के लिए। तो कोई भी प्रकार का नशा नहीं, चाय कॉफ़ी भी एक नशा है। कई कई बार लोग हम लोगों से पूछते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाय कॉफ़ी में क्या है, वो भी नहीं पीते आप लोग, इसमें क्या है, वो भी नशा है, क्यों पीना है। अच्छा भला दूध है उसको पीजिए, उसको काला करके पीते हो आप लोग, क्या लाभ है। भगवान ने गाय इतना अच्छा सफ़ेद दूध देती है, वो बेचारी जब चाय को देखती होती हो तो होगी तो आँखों में आंसू लाती होगी कि मेरे सफ़ेद दूध का क्या कर दिया इन्होंने। अब सफ़ेद अच्छा दूध उसको काला करके पीते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लगता, सारा स्वाद चला जाता दूध का। गाय का दूध जब आप पीते हैं तो आप कभी कच्चा दूध पीजिए या जो भी नहीं पी सकते, बहुत अच्छा स्वाद होता। अब उसमें वो सब डाल डाल के कालापन उसका और उसको करके कड़वा करके फिर पिया जाता है, तो वो नशा है। और इसका प्रमाण क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय वाय पीते हैं सुबह, जब तक चाय नहीं मिले तो उनका सर दर्द हो जाता है, ऐसे कई लोग हैं आप जानते होंगे। क्यों होता है, क्योंकि वो एक नशा है। जब उस नशे को किया जाता है तब आपका सर ठीक रहता है, नहीं करेंगे तो सिर दर्द हो जाता है। जैसे आप जानते हैं लोग ड्रग्स लेते हैं, तो जो व्यक्ति ड्रग लेता है जब तक ड्रग्स लेता है वो ठीक रहता है, जब ड्रग एक दिन भी नहीं ले तो जी नहीं सकता। तो ये नशे हैं ये सब, तो इसीलिए हम लोग चाय कॉफी को भी नहीं। कृष्ण और हमारे बीच में इस चाय को क्यों लाना चाहिए, नशे को क्यों लाना चाहिए, मांस को क्यों लाना चाहिए? तो इसीलिए ये चार नियम का पालन। तो कृष्ण ने ये कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं समझाता सबको, और अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं युद्ध करता। कृष्ण कहते हैं लेकिन जुआ नहीं खेलने देता, लेकिन क्या करूं मुझे जाना था। तो युधिष्ठिर ने पूछा आप कहां थे, अगर द्वारका में नहीं थे तो कहां थे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं हस्तिनापुर में था, द्वारका जाने से पहले राजसूय यज्ञ हुआ तो शिशुपाल का वध हो गया, मैंने शिशुपाल को मार दिया सबके सामने। तो इससे शाल्व बहुत क्रोधित हो गए थे, और फिर उन्होंने उस समय जब मैं हस्तिनापुर में था उस समय उन्होंने द्वारका पे चढ़ाई कर दी। उनके पास एक विमान था जिस पे चढ़कर वो युद्ध किया करते थे, तो उन्होंने द्वारका में चढ़ाई कर दी। कोई था नहीं उस समय, हम लोग सब यहाँ राजसूय यज्ञ में आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया। और इतना ही नहीं, घूम घूम कर कह रहा था कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है वो कृष्ण, आज उसे मार डालूंगा, उसने शिशुपाल का वध किया, कंस का वध किया, मैं बदला लूंगा इत्यादि। तो जब ये वापस गए कृष्ण तो पता चला कि ऐसे ऐसे उसने उत्पात किया, तो उनको जाना पड़ा फिर शाल्व को मारने के लिए। तो उस समय वो शाल्व से युद्ध करने चले गए थे और शाल्व को मार भी गिराया उन्होंने, उसकी सारी सेना को समाप्त किया। और जब वापस आए तब उन्हें पता चला कि पांडवों को वनवास हो गया, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज से वो कहने लगे कि मैं आ नहीं सका। खैर फिर ये सब बातें करके फिर सब चले गए, कृष्ण चले गए, धृष्टद्युम्न चले गए। अब द्रौपदी युधिष्ठिर से बात करने लगी, युधिष्ठिर को कहने लगी, थोड़ा क्रोध दिला रही थी क्योंकि युधिष्ठिर बड़े शांत व्यक्ति हैं, कभी क्रोध ही नहीं करते, उनको क्रोध आता ही नहीं। इतना सब होने के बाद भी अगर दुर्योधन, आप जानते हैं इतना सब होने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन की रक्षा की थी, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। दुर्योधन ने उनका सब धोखे से छीन लिया, घर से निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया, और इतना ही नहीं दुर्योधन कर्ण इत्यादि अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए जंगल में उनको चिढ़ाने के लिए आए। आप जानते ना, जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं हो और हम जाके उसको दिखाएं, जैसे मान लीजिए किसी ने उपवास रखा है और आप उसके सामने बैठ के रसगुल्ला गुलाब जामुन खाएं, तो क्या होगा, सामने वाला गुस्से में आएगा ना। तो ये दिखाने के लिए कि पांडवों के पास कुछ नहीं, हमारे पास कितना ऐश्वर्य है, ये सब चले गए। और वहां पे गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया, ये भी कथा आगे आएगी। और गंधर्वों ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले कर्ण भाग गए वहां से, छोड़कर मित्र दुर्योधन को, दुशासन भाग गए, दुर्योधन को बंदी बना लिया और ले जा रहे थे वो लोग। और उस समय जब युधिष्ठिर को पता चला तो देखिए युधिष्ठिर का भाव, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा जाओ बचा के लेकर आओ। भीम ने कहा दुर्योधन को बिल्कुल नहीं, मरने दो उसको, अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम आपस में लड़ सकते हैं लेकिन बाहर वो हमारे परिवार का सदस्य है, अगर उसको कुछ हो गया तो हमारे पूरे वंश का नाम खराब होगा, जाओ बचा के लेकर। भीम को जाना पड़ा। आप सोचिए भीम इतना कुछ से बोल कर आया था, इसकी जांग तोड़ दूंगा, इसका ये सब करूंगा, इसको लात मारूंगा मुंह पर, और जाकर उसको ही बचाना पड़ रहा है केवल युधिष्ठिर के लिए। तो द्रौपदी जानती थी युधिष्ठिर बड़े शांत व्यक्ति, क्षमा हर समय क्षमा कर दो क्षमा कर दो। तो क्रोध दिलाना चाहती थी तो बताने लगी सब क्या क्या हुआ क्या हुआ। फिर कहने लगी कि अरे आप कैसे व्यक्ति हो, दुर्योधन अभी तक जीवित है, आपको उसको मारना चाहिए था, युद्ध करना चाहिए, आप यहाँ वन में बैठे हुए हो। मतलब क्रोध दिला रही थी, क्या वन में बैठे हो, चलो युद्ध करो। युधिष्ठिर अपना शांत से सुन रहे थे, हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो द्रौपदी ने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहे, तो उन्होंने इतिहास बताया। द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज ने एक बार प्रश्न किया था प्रहलाद महाराज से। अब बलि और प्रहलाद तो दोनों श्रेष्ठ लोग हैं, तो बलि ने प्रश्न किया था प्रहलाद महाराज से कि आप मुझे बताइए क्षमा श्रेष्ठ है या क्रोध करना। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, क्षमा करना चाहिए या क्रोध या शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और उस समय प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया था, द्रौपदी कहती हैं प्रहलाद ने कहा दोनों आवश्यक हैं, क्षमा भी और क्रोध भी। क्षमा हर समय नहीं करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कुछ स्थानों पर क्षमा करनी चाहिए लेकिन हर जगह नहीं। अगर कोई व्यक्ति हर जगह क्षमा करता है तो उसके ही जो दास, उसके ही जो सेवक हैं, उसका मान नहीं करते, उसका आदर नहीं करते और वो बहुत सारी चीजों को खो बैठता है। और क्रोध भी हमेशा नहीं करना चाहिए, तो दोनों हमेशा नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता रहता है वो अपने प्रियजनों को खो बैठता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। वो द्वेष उत्पन्न करता है, विरोधियों को उत्पन्न करता है, फिर उसकी छोटी सी गलती होती है तो सारे विरोधी बड़ा करके उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इसलिए दोनों नहीं करना चाहिए हर समय। हाँ, समय समय पर। वो बताने लगे क्षमा किसको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अपराध करता है लेकिन पूर्व में उसने आपका कोई अच्छा किया है तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अपराध करता है उसको क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई जानबूझकर अपराध करता है उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहने लगी कि आप इतना क्षमा मत करो, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो। और फिर युधिष्ठिर महाराज उसको समझाने लगे क्रोध करने से बहुत नुकसान होता है, बड़ा नाश होता है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे द्रौपदी प्रयास कर रही थी कि किसी तरह युधिष्ठिर महाराज को क्रोध दिलाए, लेकिन युधिष्ठिर को क्रोध ही नहीं आ रहा था। तो युधिष्ठिर अपना वर्णन कर रहे थे कि हमें नहीं करना चाहिए क्रोध इत्यादि, शांत रहना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। तो ऐसे चर्चा चल रही थी और द्रौपदी चाहती थी कि युद्ध हो। वो बहुत बड़ा वर्णन महाभारत में कई अध्यायों में किया गया द्रौपदी, फिर भीम आ गए, भीम ने भी कहा युधिष्ठिर को हाँ ये जो कह रही है सही है, अभी चलो युद्ध करेंगे। तो भीम को भी शांत किया और उसके बाद फिर व्यासदेव आए। व्यासदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि देखो अभी युद्ध होना तो अवश्यम भावी है, होगा ही, और कौरवों के पास बहुत शक्ति है, तो तुम अर्जुन को अब भेजो दिव्यास्त्र लाने के लिए। तो फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अब इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि जो द्रोण हैं, भीष्म हैं इत्यादि, ये हर तरह का युद्ध कर सकते हैं, तो तुम्हें भी दक्ष होना चाहिए, तुम्हें हमारी आशा हो युद्ध में विजय की, तो इसलिए तुम जाओ। तो उस समय जाके अर्जुन ने बहुत तपस्या की, कड़ी तपस्या। अर्जुन की तपस्या का वर्णन है कि पहले अर्जुन दो दिन में एक बार फलाहार करते थे, तपस्या करना जब शुरू किया, फिर उसको बढ़ा दिया चार दिन में एक बार, फिर आठ दिन में एक बार, पंद्रह दिन में एक बार फलाहार, फिर वो भी बंद हो गया। इतनी तीव्र कड़क कड़क तपस्या हो गई कि सारे देवता फिर इंद्र के पास गए। उससे पहले, तपस्या के पहले जब वो पहुंचे थे तो धनुष इत्यादि लेकर पहुंचे थे, तो इंद्र ने परीक्षा ली। इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में आए और बोलने लगे ये क्या आप तपस्या करने आए हो, धनुष बाण क्यों लेकर आए हो, धनुष और तलवार फेंक दो इसको। अर्जुन ने कहा नहीं ये मैं फेंक नहीं सकता। उन्होंने कहा क्या लाभ है, अरे आपको तो अभी दिव्यता प्राप्त हो गई है, आप तो दिव्य लोकों को जाओगे, इतने ऊपर आ गए हो अब आप, अभी ये सब छोड़ो। अर्जुन ने कहा नहीं ये नहीं छोड़ो। खैर परीक्षा थी, तो फिर इंद्र ने कहा कि आप तपस्या करो, तो इंद्र के कहने पर तपस्या कर रहे थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और फिर जब बहुत तपस्या उनकी तीव्र हो गई तो सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे कि ये अर्जुन ये तपस्या कर रहा है क्या चाहता है, हमें नहीं पता, आप कुछ कीजिए। ये देवता बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं अगर कोई तपस्या करता है, आज भी आप थोड़ी तपस्या करने शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर सारी तपस्या भंग। हम लोग सुनते हैं ना कि जब भी कोई तपस्या करने लगता है, इंद्र सबसे पहले अप्सराओं को भेजना शुरू कर देते हैं। विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने भेज दिया मेनका को, घुंघरू की झनकार, हरि बोल, समाप्त, सारी तपस्या समाप्त। तो आज भी इंद्र करते रहते हैं। तो देवताओं ने जाकर कहा तो शिव जी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है, अभी मैं जाऊँगा उसके पास। तो शिव जी आए, उन्होंने अपना वेश बदल लिया, एक वन में रहने वाले किरात, एक शिकारी का वेश कर लिया और वो आए। अर्जुन तपस्या कर रहे थे और अर्जुन को मारने के लिए एक असुर सुअर का रूप लेकर आया था, और उस समय अर्जुन ने तीर चलाना था। तो जैसे ही तीर चलाने लगे, शिव जी ने वहां से कहा मत चलाओ उसको, मैं मारने वाला हूँ। अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरा शिकार है। बोले नहीं, मेरा शिकार है। तो दोनों ने एक साथ तीर चलाए। तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया कि कौन व्यक्ति है। तो युद्ध करने लगे अर्जुन। बहुत अच्छा वर्णन है महाभारत में, अर्जुन आप सोच लीजिए, गांडीव धारी अर्जुन, और ये एक शिकारी वन में रहने वाला व्यक्ति। तो अर्जुन ने तीर पे तीर छोड़े। अर्जुन के पास तुनीर था, तुनीर जानते हैं जिसमें तीर को रखा जाता है, वो अक्षय था। अक्षय यानी उसमें कभी खत्म नहीं होते थे तीर, निकाल के चलाते रहे कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन आज जब युद्ध कर रहा था उसके सारे तीर खत्म हो गए। अर्जुन हैरान हो गया, ये तो अग्निदेव ने दिया था, इसमें तो तीर ही खत्म नहीं होते थे, ये क्या हो गया, सारे तीर खत्म हो गए। अर्जुन ने सब तीर चला दिए। फिर अर्जुन ने सोचा अच्छा ठीक है, इसको धनुष से ही खींच कर बांध देना चाहिए, धनुष भी इतना शक्तिशाली था। तो उन्होंने धनुष से पकड़ कर खींचने लगे तो उसका धनुष भी खत्म हो गया, सारे तीर गायब हो गए, धनुष गायब हो गया। अर्जुन ने तलवार निकाली, तलवार लेकर जोर से उन्होंने इस शिकारी के सर पे, मस्तक पे मारा। और अर्जुन की तलवार ऐसा कहते हैं कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती थी। तो जब मारा तो उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन तो बड़ा हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। आप सोचिए कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अर्जुन सोचने लगे क्या हो गया, मेरा गांडीव विफल हो गया, धनुष सब गए, बाण गए, तलवार गई। फिर उसने युद्ध करना, हाथों से युद्ध करना शुरू किया। और हाथों से जब युद्ध किया तो शिवजी ने इतना मारा अर्जुन को, इतना मारा, सब खून निकल गया उसका, अर्जुन का सारी शक्ति गई। बहुत युद्ध हुआ दोनों में, लेकिन अर्जुन खून खून और उठा नहीं जा रहा। अर्जुन को पहली बार ऐसा हुआ था, बहुत शक्तिशाली थे अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हमारी आपकी तरह नहीं थे, हम लोग तो एक थप्पड़ मारे तो खत्म है। तो अर्जुन सोच रहा क्या हो रहा है, उसने सोचा मुझे अभी इससे बचने के लिए अभी मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूँ। तो उसने जल्दी से एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया, फूल लिए, थोड़ी माला बनाई, छोटी सी माला इतनी सी, और जल्दी जल्दी उनको चढ़ाया और उनकी प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो देखा माला गायब है, और देखा कि वो जो व्यक्ति खड़े सामने उसके सिर पर वो माला है। तो तब अर्जुन को समझ में आया कि अरे ये तो शिव जी है और मुझे कोई हराने वाला हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने चरण पकड़े शिव जी के, क्षमा मांगी। अर्जुन ने कहा क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे युद्ध किया, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुमने इतना अच्छा युद्ध किया, तुम मेरे ही समान युद्ध कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि आगे चलकर मेरा युद्ध होने वाला है बड़े बड़े महारथियों से, और मैं उस युद्ध में विजय के लिए आपका पशुपत अस्त्र चाहता हूँ। पशुपत अस्त्र शिव जी का जो अस्त्र है, बहुत विशेष अस्त्र है, जिसको ब्रह्मशीर भी कहते हैं, तो मैं वो आपका चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये जो अस्त्र है ये बड़े बड़े देवता भी चला नहीं पाते हैं, यमराज के पास भी नहीं है, यमराज भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन तुम्हें मैं दूंगा क्योंकि तुम योग्य हो। तो उस समय उन्होंने अपना पशुपतास्त्र अर्जुन को प्रदान किया और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बहुत सारा संवाद भी हुआ था उनका शिव जी के साथ में। तो खैर अर्जुन प्रसन्न हुए, फिर अन्य देवता आए, उन्होंने बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए, और फिर इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि तुम्हें आगे बहुत बड़ा काम करना है, चलो अभी स्वर्ग में चलो। तो उसको स्वर्ग में लेकर चले गए। तो ऐसे अर्जुन स्वर्ग में पहुंचे, वहां पर बहुत स्वागत हुआ अर्जुन का। और फिर काफी समय तक रहे स्वर्ग में, और उस समय उनको मिलने के लिए बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे। तो इन सब का वर्णन अगले सोमवार को महाभारत की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। थोड़ा इस तरफ बातें कम करें, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ अभी बोलिए। यहाँ एक साल बीत गया, अर्जुन काफी वर्ष उधर थे, यहाँ काफी समय बीत गया। देवताओं का एक दिन यहाँ एक वर्ष के समान है, वहाँ काफ़ी समय रहे तो यहाँ कुछ वर्ष बीत गए थे, तो अर्जुन वहीं पर रहकर अस्त्रों को ले रहे थे। तो कितने समय रहे, क्या क्या अस्त्र लिए, इसका वर्णन हम अगली बार करें। और कोई प्रश्न? पाशुपात अस्त्र यूज क्यों नहीं किया अर्जुन ने? शिवजी ने यह अस्त्र देते समय उनसे कहा था कि अगर ये अस्त्र तुमने साधारण मनुष्यों पर इस्तेमाल किया तो सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो ये अस्त्र कोई साधारण नहीं है, ये उसी पर इस्तेमाल करना जो इसके योग्य हो। तो कोई इसको योग्य मिला नहीं पशुपतास्त्र के लिए, अर्थात आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे भीष्म इत्यादि को मारना होता तो शायद इस्तेमाल करते, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसीलिए उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये बहुत विध्वंसकारी अस्त्र है, साधारण अस्त्र नहीं है। तो शिवजी ने देते समय कहा था किसी साधारण मनुष्य पे, अयोग्य मनुष्य पे कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना। कर्ण के वध के लिए पशुपतास्त्र कहते तो हैं, लेकिन महाभारत में और भी अस्त्रों का वर्णन है कि इसका सर किससे उसको मारा गया। तो पशु हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द, दरअसल ये शब्द है हरा, बोलने में हरे हो जाता है, जैसे अंबा अंबे हो जाता है। तो हरा हरा ये भगवान की शक्ति का सूचक है, श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हरा। तो हरे कृष्ण में जब हम लोग हरे बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, ये इस महामंत्र का अर्थ है। ठीक है, ऑन कीजिए उसको, आप बैठ कर ही प्रश्न ऑन कीजिए। हम इतनी भक्ति करते हैं, यस क्यों नहीं देख सकते? आप पहले भक्ति कीजिए, जब आप भक्ति करेंगे तो कृष्ण को भी देख सकेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कृष्ण भी व्यक्ति हैं, उनको देखने में क्या कमी है, क्यों नहीं देख सकते? हम तो रोज देखते हैं, आप कल सुबह आइए, अभी दर्शन होगा, रोज देख, कोई चिंता नहीं। और कोई प्रश्न? यस, हम लोग देख सकते हैं, श्री कृष्ण को देख ही नहीं सकते, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पहले हमें जो हमारी इच्छाएं हैं हृदय में, जिनके कारण हम इस जगत में बंधे हुए हैं, उनको समाप्त करना है। क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बाकी जो चीज़ आपने पकड़ी है उसको छोड़ना है। मान लीजिए आपके हाथ में आपने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, अभी आपने इसको पकड़ा हुआ है, अब आप इसको पकड़ना चाहते हैं, चलो इसको भी पकड़ लिया, अब आप इसको पकड़ना चाहते हैं, क्या करना है? छोड़ के ही पकड़ेंगे ना। तो अभी तक आपने अपनी इच्छाओं को ही नहीं छोड़ा है, भोग की इच्छा, इस भौतिक जगत को पकड़े हुए हैं, तो कृष्ण खड़े हैं, पकड़ेंगे कैसे उनको? इसको छोड़िए, कृष्ण को पकड़िए। तो ये मार्ग है, तो भक्ति का मार्ग यही है जो हमें ये सिखलाता है कि कैसे इस भौतिक जगत के इच्छाओं को, भोगों को, आसक्तियों को छोड़कर कृष्ण को पकड़ना प्रारंभ करें। और जब वो करेंगे तब कृष्ण आएंगे। कृष्ण तो हैं लेकिन आप पकड़ नहीं रहे हैं उन्हें, तो जब आप पकड़ने के लिए तैयार होंगे फिर कृष्ण आएंगे। ठीक है, यस। तो उनकी इच्छा ही थी, ये तो वो सांत्वना दे रहे थे। अब ये भी बताइए, कृष्ण ऐसा कहते हैं कि मैं वहां नहीं था, क्या कृष्ण कहाँ नहीं होते हैं? कृष्ण तो सब जगह है, वो तो अंतर्यामी है, सारे कण कण में है। तो ये तो उस समय वो केवल सांत्वना दे रहे थे उन लोगों को लीला, क्योंकि द्रौपदी अपना विरह प्रकट कर रही थी, आपने मेरी रक्षा नहीं की। मैं था नहीं इसीलिए रक्षा नहीं की, लेकिन ये तो हुआ उनकी इच्छा से ही। और जब कहा जाता है कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी सत्य है। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि जो जगत में पाप हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये भी कृष्ण की इच्छा है, ये भी कृष्ण करा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और अगर सब कुछ कृष्ण करा रहे हैं तो हमें क्यों दंड मिलता है, है ना? मान लीजिए आप कुछ करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो दंड आपको मिलना चाहिए कि हमें मिलना चाहिए? अभी सब कुछ कृष्ण करा रहे हैं लेकिन उसका कष्ट हमें भोगना पड़ता है, तो ये कैसे? एक तरफ उनकी इच्छा के बिना उनकी पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब हम अभी हाथ भी ला रहे हैं तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, सही है? तो फिर जो हमने किसी की हत्या कर दी हाथ हिला के, दंड हमें क्यों मिलता है? कृष्ण को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, इसको कभी और चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न? लेकिन ये सांत्वना थी, वो सांत्वना दे रहे थे। और कोई प्रश्न? यस, पीछे दीजिए माइक। हरे कृष्ण। कभी कभी हम लोग सपने देखते हैं भगवान का, तो क्या भगवान सही में प्रकट होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो भी सकते हैं, आपको कुछ संदेश देने के लिए, आपको गंभीर बनाने के लिए, और नहीं भी हो सकते। तो कभी कभी हमारे मन की कल्पना हो सकती है। जैसे स्वप्न क्या है, हमारे मन पर बहुत सारे छाप पड़े हुए हैं, प्रभाव पड़े हुए हैं, और जब रात के समय हम लोग सोते हैं तो मन हमारा कार्य करता रहता है, बाकी सारी इंद्रियां बंद हो जाती, मन कार्य करता है। तो मन उस समय जो हमने पहले चीज़ें देखी हुई हैं उनको प्रकट कराता है। जैसे मान लीजिए स्वप्न में आप सोने का पर्वत देखें, अब सोने का पर्वत तो नहीं होता है, कहीं देखा नहीं, तो आप कैसे देख सकते हो? आपने सोना देखा है, आपने पर्वत देखा है, मन ने दोनों को मिला दिया, आपने सोने का पर्वत देख लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा कृष्ण का चिंतन करता है तो हो सकता है उसको दिख जाए। तो दोनों हैं, सही में भी भगवान हो सकते हैं, कुछ संदेश देने के लिए आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, वो तो कहीं भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, किसका किसका? द्रौपदी। अच्छा, द्रौपदी को भगवान शुरू से मदद क्यों नहीं करते, अंत में ही क्यों करते, पहले ही बचा लेते, दुर्योधन दुशासन के हाथ काट देते? दो कारण। पहला, लीला। अभी जैसे ड्रामे में डायरेक्शन किया है भगवान ने, तो जब तक वो एंट्री नहीं है वो करते नहीं है एंट्री भगवान, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते ऐसा हो तो फिर सारा युद्ध ही नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी महाभारत रची पृथ्वी का भार खत्म करने के लिए, तो युद्ध नहीं होता। अगर समझे दुशासन या दुर्योधन कह देते नहीं 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 द्रौपदी तो हमारे लिए पूजनीय है, उसको स्पर्श भी नहीं करना, तो फिर पांडव उनको क्षमा कर देते, कुछ होता ही नहीं युद्ध। द्रौपदी का अपमान किया तभी तो भीम इतना भड़के, अर्जुन इतना भड़के कि नहीं इनको करना ही है, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे इनको, युद्ध करेंगे। तो एक वो कारण कि लीला की दृष्टि से। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो फिलोसॉफिकली या सिद्धांत की दृष्टि से है, कि भगवान ये दिखलाना चाहते थे कि जब तक जीव अपने ऊपर थोड़ा भी विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तब तक कृष्ण आते नहीं। जीव को पूर्ण समर्पण करना चाहिए कि कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो द्रौपदी ने जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन खींच कर ला रहा था, द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा, वो अपने हाथ से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। जब भरी सभा में ले आया, द्रौपदी सबके पास गई, अग्रे कुरु नाम अथ पांडवानाम, लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा। वो सोच रही थी ये मुझे बचा लेंगे। फिर जब साड़ी खींचने लगा तो भी द्रौपदी अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए थी साड़ी, अपने बल पर बचने का प्रयास कर रही थी। फिर छूट गई साड़ी हाथ से, क्योंकि दुशासन बहुत शक्तिशाली था, एक हाथ से पकड़े हुए थी। फिर वो भी छूट गया, उसने मुंह से दबा लिया कृष्ण को पुकारने के, लेकिन मुंह से फिर भी पकड़े हुए थे, कृष्ण नहीं आए। फिर जब उसने सोचा कुछ नहीं हो सकता, उसने सब छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारा, उस समय कृष्ण आए। तो ये सिद्धांत कृष्ण स्थापित करना चाहते थे कि जब तक हम ये सोच लेंगे कि हम अपने बल पर कुछ कर सकते हैं, तब तक कृष्ण कहते करते रहो, फिर कृष्ण उसमें दखल नहीं देते। लेकिन जब जीव ये सोच लेता है कि नहीं, कृष्ण ही, तुम ही तो रक्षक आर पालक अमार, आप ही रक्षक हैं, आप ही पालक हैं, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा, तब कृष्ण तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये दिखलाने के प्रमुखता लीला में बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि रामचंद्र जी को क्या पता नहीं था कि रावण लेकर जाने वाला सीता को भगवान है, कैसे भगवान है, तो फिर वो क्यों चले गए? अब वो तो जाएंगे तभी तो सब होगा, नहीं तो आते ही क्यों लीला करने? वो तो आए हैं ना पूरा ड्रामा करने के लिए, तो वो ड्रामा तो पूरा चलेगा। तो ड्रामे में जो जो चीज़ें हैं वो होंगी, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई होगा, तो वो सब भी, वो भी भाग लेते हैं उसमें। क्या रामचंद्र जी जानते नहीं थे, वो जब ढूंढ रहे थे पेड़ों से, पूछ रहे थे सीता कहाँ है, तुमने मेरी सीता को देखा, क्या वो जानते नहीं थे कहाँ है? वो सब जानते थे। तो लीला चल रही है। तो इसलिए अगर हम इस दृष्टि से सोचे कि अरे वो तो सब कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया, तो फिर लीला ही नहीं होगी, तो उस मात्र के लिए। लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ सिद्धांत भी स्थापित करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर से आपको केवल याद दिलाना चाहते हैं, जन्माष्टमी उत्सव अब दूर नहीं।